मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लौदातो सी के दूसरे अध्याय सृष्टि का सुसमाचार की चर्चा करते हुए अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में वैश्विक एकता के संबंध में कहा कि हमारा केवल एक हृदय है और वहाँ व्याप्त बुराई जो हमें एक जंतु के संग दुर्व्यवहार करने को अग्रसर करती है, अति शीघ्र ही दूसरे व्यक्तियों के संग हमारे संबंध में व्यक्त होगी। हर क्रूर व्यवहार जिसे हम किसी जीव के लिए करते हैं हमारे लिए मानवीय सम्मान के विरुद्ध है। हम अपने को कभी भी पूर्ण प्रेम के योग्य नहीं कह सकते हैं यदि हम सच्चाई के किसी भी तत्व का अनादर करते हैं। शांति, न्याय और सृष्टि की सुरक्षा अपने में तीन ऐसे विषय वस्तुएं हैं जो सदैव एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे को व्यक्तिगत रूप में इसका शिकार नहीं बना सकते हैं। सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम मानव भाई बहनों के रूप में एक दूसरे के संग विस्मयकारी ढंग से तीर्थ यात्री की भांति हैं। यह ईश्वर द्वारा अपने प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम से बुना गया है और जो हमें भाई सूर्य, बहन चंद्रमा, भाई नदी और धरती माता के संग स्नेहपूर्ण एकता में एकजुट करता है। श्रोताओ, चाहे हम विश्वासी हों या अविश्वासी, आज हम इस बात से अपने को सहमत पाते हैं कि पृथ्वी हम में से हर किसी के लिए विरासत में दी गई है, जिसके फलों से हर कोई लाभान्वित होने को बुलाया गया है। विश्वासों के लिए यह सृजनहार ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने का सवाल है, क्योंकि ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि हर एक के लिए की है। अतः प्रत्येक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण में एक सामाजिक परिपेक्ष को शामिल करने की आवश्यकता है जो गरीबों और वंचितों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखे। वैश्विक संपत्ति के संबंध में निजी संपत्ति के अधिकार का सिद्धांत और इसके लिए हर किसी के द्वारा इसकी उपयोगिता अपने में एक स्वर्णिम सामाजिक नियम है, जहां हम संपूर्ण नैतिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रथम सिद्धांत को पाते हैं। ख्रिस्तीय परंपरा ने कभी भी संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को पूर्ण मान्यता या अनुलंघनीय निरूपित नहीं किया है और इस भांति व्यक्तिगत संपत्ति के सभी रूपों में हम सामाजिक उद्देश्य को पाते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इस शिक्षा पर बलपूर्वक जोर देते हुए कहते हैं, ईश्वर ने पृथ्वी को पूरी मानव जाति के लिए प्रदान किया है जिसे इसके सारे सदस्यों का भरण पोषण हो सके, बिना किसी के संग भेदभाव किए हुए या बिना किसी को प्राथमिकता देते हुए। ये हमारे लिए अति मजबूत शब्द हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक तरह का विकास जो मानव अधिकारों का व्यक्तिगत और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सम्मान नहीं करता और उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता, जिनमें राष्ट्र और नागरिकों के अधिकार शामिल हैं, तो यह वास्तव में मानव के योग्य नहीं हो सकता है। वे इस संबंध में स्पष्ट रूप में इस बात की व्याख्या करते हैं कि कलीसिया निश्चित रूप में व्यक्तिगत संपत्ति की वैधता की सुरक्षा करती है, लेकिन वह इस बात की भी शिक्षा देती है कि सभी निजी संपत्ति पर हमेशा एक सामाजिक बंधन होता है, जिससे वस्तुओं के द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसे ईश्वर ने स्थापित किया है। इसके परिणाम स्वरूप वे आगे कहते हैं, यह ईश्वर की योजना नहीं है कि इस उपहार का उपयोग इस भांति हो कि यह कुछ एक लोगों के फायदे के लिए हो। यह हमारे लिए मानवता के एक हिस्से की अन्यायपूर्ण आदतें पर गंभीर सवाल करने का आह्वान करता है। धनी और गरीब दोनों का सम्मान बराबर है, क्योंकि ईश्वर उन दोनों के निर्माता हैं। उन्होंने उन दोनों को छोटा और बड़ा बनाया है, और वे अच्छे और बुरे दोनों के लिए अपना सूर्य उगाते हैं। हम इसके व्यवहारिक परिणाम को पाते हैं, जैसे कि पराग्वे के धर्माधर्शकों ने इसकी ओर हमारा ध्यान इंगित कराया है। हर कृषक का प्राकृतिक अधिकार है, जिसके तहत वह अपने लिए भूमि का एक उचित भाग धारण करता हो, जिससे वह अपना निवास तैयार कर सके, अपने परिवार और जीवन की सुनिश्चितता हेतु भरण पोषण का कार्य कर सके। यह अधिकार उसे दिया जाना चाहिए जिससे वह कार्य अपने में भ्रामिक नहीं अपितु वास्तविक हो सके। इसका अर्थ यह है कि संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार के साथ साथ ग्रामीणों को तकनीकी शिक्षा, क्रय विक्रय, बीमा और बाजारों तक पहुंच के साधन प्राप्त हों। प्राकृतिक पर्यावरण भी अपने में सबों के लिए दी गई एक चीज है, जिसका अधिकार हर मानव को है और सारे उसके प्रति उत्तरदायी हैं। यदि हम किसी चीज को अपना बनाते हैं तो यह हमें सबों की भलाई हेतु उसका प्रबंधक बनाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा को उस भार से बोझिल करते हैं जहां हमने दूसरों के जीवन अस्तित्व में अवरोध उत्पन्न किया है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड के धर्माध्यक्ष यह सवाल करते हैं कि हत्या नहीं करने का अर्थ क्या है, क्योंकि विश्व आबादी का 20% जनसंख्या संसाधनों का उपयोग इस दर से कर रही है जो गरीब देशों और भविष्य की पीढ़ी को उनकी जीविका की जरूरतमंद चीजों से वंचित करेगी। श्रोताओं, यीशु धर्म ग्रंथ में सृजनहार ईश्वर पर विश्वास को प्रकट करते हुए एक मूलभूत सच्चाई पर जोर देते हैं, ईश्वर पिता हैं। अपने शिष्यों के संग वार्ता करते हुए वे उन्हें इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे सारी सृष्ट प्राणी के संग उनके पितृत्व संबंध को देखने की कोशिश करें, जिसे वे हम सबों के लिए प्रकट करते हैं। अपनी प्रभाव करने वाली करुणा में वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की आंखों में हर कोई महत्वपूर्ण है। क्या 5 गौराइये 2 पसेरी में नहीं मिलते हैं? उनमें से किसी एक को ईश्वर नहीं भूलते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं और ना ही लूनते और बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। ईश्वर दूसरों को निमंत्रण देने में सफल होते हैं, जिससे वे विश्व की सुंदरता को देख सकें और उनमें सहभागी हो सकें, क्योंकि वे स्वयं अपने को प्रकृति से निरंतर संयुक्त रखते हैं, उसे अपनी कोमलता और आश्चर्य में देखते हैं। वे धरती में सारी ओर घूमते हैं। वे बहुधा रुककर अपने पिता के द्वारा बनाए गए सुंदरता पर विचार मंथन करते हैं, और वे अपने शिष्यों को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे ईश्वर के दिव्य संदेश को चीजों में देखें। अपनी आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटने के लिए पक चुके हैं। ईश्वर का राज्य राई के एक दाने की भांति है, जिसे एक व्यक्ति लेता और अपने खेतों में बोता है। यह सभी बीजों में सबसे छोटा बीज है, लेकिन जब यह बढ़ता तो सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रभु तो जीवन दाता, मैं गाऊंगा तेरी स्तुति सदा,
तेरी स्तुति सदा।
प्रभु तू जीवन दाता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में पोप फ्रांसिस के प्रतिष्ठापन समारोह की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोप फ्रांसिस को कई लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। पोप फ्रांसिस ने 19 मार्च 2013 को संत जोसेफ के महापर्व के अवसर पर कैथोलिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी का पद ग्रहण किया था। इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेल्ला ने एक पत्र में उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लिखा, परमधाम पीठ की औपचारिक शुरुआत की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आपको आपके सर्वोच्च पद की हर भलाई और फलदायी निरंतरता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पिछले वर्ष के दौरान जरूरतमंदों, हाशिए पर जीवन यापन करने वालों, संघर्ष और हिंसा से पीड़ित लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए आपकी लगातार अपील ने उन लोगों को विचार करने का अवसर प्रदान किया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों और न्याय एवं प्रामाणिक निष्पक्षता के मानदंडों से प्रेरित समाधान खोजने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं। हमारे समय की मुख्य चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल युद्ध बल्कि बढ़ती आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं, पर्यावरणीय जोखिम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग के नैतिक परिणाम, विश्वासियों एवं गैर विश्वासियों को सुसंगत प्रतिक्रियाओं की पहचान करने, मानवीय गरिमा की सुरक्षा और हर क्षेत्र एवं परिस्थिति में आम हित को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। इटली के राष्ट्रपति ने याद किया कि कुछ हफ्ते पहले लातरन संधि की 95वीं वर्षगांठ और रिपब्लिकन समझौता की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। उन्होंने कहा, इन ऐतिहासिक लक्ष्यों की उपलब्धि ने परमधम पीठ एवं इटली के बीच उपयोगी सहयोग को और मजबूत किया है। उन्होंने पोप के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं इटली वासियों के प्रति आपकी चिंता के लिए आपको अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इटली की ओर से मेरी सबसे उत्कट एवं स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं स्वीकार करें। रांची महाधर्म प्रांत के नए महाधर्म अध्यक्ष अतिमानने विंसेंट आयंत का प्रतिष्ठापन समारोह 19 मार्च को रांची स्थित लॉयला मैदान में भारत और नेपाल के लिए पोप के प्रेरित राजदूत महाधर्म अध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेली की उपस्थिति में रांची के साथ सम्मान सेवानिवृत्त महाधर्म अध्यक्ष फेलिक्स टप्पो येसु समाजी के करकमलों से सम्पन्न हुआ। पद ग्रहण समारोह पूर्वाहन 10:30 बजे प्रवेश नृत्य के साथ शुरू हुआ। अतिथियों के स्वागत एवं नए महाधर्म अध्यक्ष के पत्र परिचय प्रस्तुत किए जाने के बाद रांची के सेवानिवृत्त महाधर्म अध्यक्ष फेलिक्स टप्पो ने प्रतिष्ठापन की धर्म विधि को आगे बढ़ाया। उनके आग्रह पर संत पापा फ्रांसिस के आदेश पत्र को पूरी कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया गया और उसके हिन्दी अनुवाद को जनता के सामने पढ़कर सुनाया गया। पोप के आदेश की उद्घोषणा के उपरांत महाधर्म अध्यक्ष विंसेंट आयंत को महाधर्म अध्यक्ष सिंहासन प्रदान की गई और उन्हें वहां विराजमान किया गया। उद्घोषक फादर तोबियस टप्पो ने कहा, प्रेरितों की परंपरा के अनुसार यह धम्म विधि धम्म प्रांत में उनके अधिकार और शिक्षक होने का प्रतीक है, क्योंकि यीशु ने ही उन्हें यह अधिकार दिया है और सभी धम्म अध्यक्ष प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं। प्रतिष्ठापन समारोह संपन्न होने पर उपस्थित विश्वासियों ने ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। इस तरह महाधर्म अध्यक्ष विंसेंट आइंद औपचारिक रूप से रांची के महाधर्म अध्यक्ष बन गए। प्रतिष्ठापक ने उन्हें मेषपालय डंडा भी प्रदान किया, जो महाधर्म अध्यक्ष के लिए उस धर्म प्रांत के चरवाहे होने का प्रतीक है। महाधर्म अध्यक्ष विंसेंट आइंद का आदर्श वाक्य है, तुम मुझ में रहो। नए महाधर्म अध्यक्ष विंसेंट आइंद रांची के सातवें महाधर्म अध्यक्ष बने हैं, जिनकी नियुक्ति की घोषणा पोप फ्रांसिस ने 30 दिसंबर 2023 को की थी। पोप फ्रांसिस ने 21 अप्रैल को मनाए जाने वाले बुलाहट के लिए 61वें विश्व प्रार्थना दिवस हेतु अपना संदेश जारी किया है और ख्रिस्तियों को हमारी दुनिया में आशा और शांति के बीज बोने के लिए हमारे साझा बुलावे का स्वागत करने का आग्रह किया है। हमारा जीवन तब पूर्णता प्राप्त करता है जब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारे क्या गुण हैं, हम उन्हें कहाँ फलप्रद कर सकते हैं और प्रेम, उदारता, स्वीकृति, सौंदर्य और शांति के संकेत एवं साधन बनने के लिए हम किस रास्ते पर चल सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने बुलाहट के लिए 61वें विश्व प्रार्थना दिवस, जिससे कलीसिया 21 अप्रैल 2024 को मनाएगी, उसके लिए अपने संदेश में ख्रिस्ते भाई बहनों को बुलाहट का सारांश पेश किया। मंगलवार को प्रकाशित संत पापा के संदेश की विषय वस्तु है, आशा के बीज बोने और शांति के निर्माण के लिए आमंत्रित। संत पापा ने याद दिलाया कि ख्रिस्ते ईश्वर प्रदत्त बुलाहट को स्वीकार करने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे कि वे दुनिया में उनकी सेवा कर सकें, चाहे समर्पित जीवन के द्वारा, पुरोहिताय के द्वारा अथवा विवाह कर या अविवाहित रहकर। उन्होंने कहा, बुलाहट के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की विशेषता कृतज्ञता होनी चाहिए। जब हम उन अनगिनत ख्रिस्तों की याद करते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर की सेवा करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को ईश्वर के लिए जगह बनाने हेतु आमंत्रित किया, ताकि वे अपनी बुलाहट में खुशी महसूस कर सकें। संत पापा ने कहा, यीशु को अपनी ओर आकर्षित करने दें। सुसमाचार का पाठ करते हुए उनके सामने अपने महत्वपूर्ण सवालों को रखें, उनकी पौत्र उपस्थिति से खुद को चुनौती देने दें, जो हमें हमेशा स्वस्थ संकट में डालते हैं। अंत में संत पापा ने ख्रिस्तियों को उठने और अपनी बुलाहट को अपनाकर अपनी उदासीनता से जागते हुए प्रभु यीशु को हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने देने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आइए हम अपने जीवन के प्रति उत्साहित रहें और जहां कहीं भी रहते हैं अपने आसपास के लोगों की प्यार से देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। नेपल्स के माफिया कामोरा के हाथों फादर जुसेपे डायना की हत्या की 30वीं बरसी पर पोप फ्रांसिस ने युवाओं से जोरदार आग्रह किया है कि वे संगठित अपराध के खिलाफ लड़ने की अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं एवं खुद को आशा से वंचित होने ना दें। पोप फ्रांसिस ने नेपल्स के पास कैसल दी प्रिंसिपे के एक पल्ली पुरोहित फादर जुसेपे डायना के जीवन और उनकी गवाही की प्रशंसा की है, जिनकी हत्या माफिया के मुखर विरोध और उनसे निपटने के लिए उनके प्रयासों के कारण 30 साल पहले हुए थे। 19 मार्च 1994 को एक बंदूकधारी बारी के संत निकोलस के चक्कर में घुस गया था, जहां फादर डायना संत जोसेफ के पर्व के अवसर पर मिस्सा बलिदान अर्पित करने की तैयारी कर रहे थे और उनके सिर में 2 गोली मार दी थी। यह क्रूर हत्या 1993 में सिसली के माफिया कोसा नोस्त्रा के हाथों सिसली शहर पलेरमो में धन्या जुसेपे पुलियेसी की हत्या के बाद हुई थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।